तब कुछ करते हुए हम सोल कॉन्शियस और परमात्मा की स्मृति में एंजॉय भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सीरियस और गंभीर, समय अनुसार जब आपस में स्नेह मिलन है, खुशी है, उसको भी एंजॉय करें, उसका भी मजा ले। हम आप लोगों को देख करके मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था। और अभी आप सबके कुछ प्रश्न आए हुए हैं, तो कोशिश करेंगे थोड़े समय में उस प्रश्नों का उत्तर हम दें। बाकी तो काफी प्रश्न, फिर प्रश्नों से प्रश्न, प्रश्न से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। फिर भी कुछ हो तो पर्सनली मिल करके फिर उस प्रश्न का उत्तर है वो देंगे। लेकिन अभी हमारे सुरेश भाई हैं, वो प्रश्न पूछेंगे। स्वामी भाई आ गए, स्वामी भाई भी आ जाएं, आए थे हमारे साथ। हाँ, और गिरीश भाई, कमल भाई, बहने भी हैं।
हाँ, स्वामी भाई जी मंच पे आ जाए। ओम शांति। जिस तरह से आप डांस कर रहे थे, खुश दिख रहे थे, उस हिसाब से तो लगता नहीं आपको कोई प्रश्न बचा हुआ है आपके पास। है क्या कुछ बचा हुआ? क्योंकि जीवन ही खुशी है, और खुशी के आधार पर हम जीवन यात्रा को आगे भी बहुत सुगमता से बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें मन में रह जाएं तो वो स्पष्ट करके हम उस यात्रा को और ज्यादा तेज गति दे सकते हैं। इसलिए कुछ प्रश्न जो कल पूरे नहीं हुए उनको हम आगे बढ़ाते हुए, मैं सबसे पहले स्वामी भाई से ही ये प्रश्न पूछता हूं कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है और वो बार बार माफी मांगता है, फिर उसको माफ भी नहीं किया जाता है, माफी मांग लेने के बावजूद माफ नहीं करते हैं, तो उसके मन में वो बार बार घूमता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं उस मनोवेग को कैसे रोक सकता हूं, या मन में जो कुंठा पैदा होती है उसको कैसे खत्म कर सकता हूं?
ओम शांति। मैं प्रश्न को फिर से समझना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे माफी मांगा।
हाँ, वो बार बार माफी, अपनी गलती के बारे में बार बार माफी मांगता है, फिर भी आप माफ नहीं करते हैं, तो उसके मन में और ज्यादा कुंठा पैदा होती है और ज्यादा।
हाँ, कोई व्यक्ति मुझसे बार बार माफी मांग रहा है लेकिन मैंने माफ नहीं किया।
हाँ,
अच्छा, तो उसके मन में कैसे,
वो जो दुख हो रहा है उसको वो खत्म कैसे करेगा?
हाँ जी, हाँ,
माफी मांग रहे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी गिल्ट होता है, उनको भी।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सी, माफी जो मांग रहा है सामने वाला व्यक्ति और मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ, राइट ना, तो नेचुरली वो जो जो भी इवेंट चला हुआ है उसका इतना ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट मेरे में हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं माफ नहीं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, उसको मैंने बहुत बार अपने मन में उठाकर उसको कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। तो जैसे होता है ना, कंप्यूटर में अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको रिसाइकल बिन में भेजते हैं, और रिसाइकल बिन में से हम उसको हमेशा डिलीट कर पाते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, वो वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर को डिलीट कैसे करना है उसकी टेक्निक मुझे नहीं पता है, तो पहले तो वो समझना पड़ेगा। नंबर टू, अगर उंगली में कांटा चुभ गया है ना, तो उसको निकालने के लिए मुझे एक सुई की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह जब वो इवेंट आया हुआ है, वो इवेंट आया है विथ हर्ट, पेन, दर्द के साथ आया है, तो वो डिलीट होगा नहीं जब तक आप उससे ज्यादा पावरफुल इमोशंस को क्रिएट नहीं करते। और इसलिए राजयोग में ये बताया जाता है कि ये अगर कोई घटना मेरे साथ घट रही है तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत कार्मिक एक अकाउंट है। तो इस ज्ञान को समझते हुए आत्मा के स्वधर्म में हम जितना टिकते हैं, जैसे एक ग्लास पानी होता है उसमें दो ड्रॉप इंक डाल देते हैं तो ब्लू हो जाता है, फिर अगर उसको ठीक करना है तो कीप ऑन पोरिंग फ्रेश वाटर। उसी तरह आत्मा के अंदर है ना, स्वधर्म में रहें, परमात्मा को याद करें, जितना हम करते रहेंगे तो जब बहुत पॉजिटिव इमोशंस जब आ जाते हैं तो वो अपने आप सहज हो जाता है। तो ये मुझे करना है ताकि मैं उसको माफ कर पाऊं। सामने वाले व्यक्ति को क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को आप बार बार माफी मांग रहे हो, वो मांगने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, आपकी वो ऊर्जा का प्रवाह शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, अगर आप अपने ऊर्जा के प्रवाह को बहुत अच्छा करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, वो दर्द को कैरी फॉरवर्ड नहीं करें। जैसे बता रहे थे ना कि वो वायरलेस ट्रांसफर होता रहता है, तो दर्द को आप भी लेकर चल रहे हो, तो आपकी ऊर्जा को बहुत अच्छी शुभ भावना करते हुए, जरूरी नहीं हर चीज हम बोलते बोलते रहें, वो अंदर के जो संकल्प है, दृष्टि है, वृत्ति है, उसको अगर हम प्योर करके देखें, ये आप एक्सपेरिमेंट जरूर जरूर करिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और बीच में परमात्मा को लेकर आइएगा, जब परमात्मा को लेकर आते हैं तो सहज हो जाता है वो काम। ओके, ओम शांति।
ओम शांति। भाई का प्रश्न था कि माफी मांगते हैं लेकिन माफ कर नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम होता है कि भाई मैं तो माफी मांग रहा हूं और ये माफ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पूछना है, और बार बार ये हो रहा है, हम माफी मांगते जा रहे हैं, माफी देते नहीं हैं, तो सबसे पहले माफी मांगने वाले ये पूछे अपने आप से और सोचिए कि ऐसा मैं क्या करता हूं जो मुझे माफी मांगनी पड़ रही है। कोई खुद महसूस करते हैं ना कि भाई मैंने कुछ गलत किया है, तब तो वो माफी मांगने की बात है, तो मैं उसको बंद करूं और अपने व्यवहार को हम चेंज करें, परिवर्तन करें, अच्छे से पेश आए, तो बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत भी नहीं और हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा, अच्छा होगा, तो सामने वाले के मन में, अपने आप में, उनके हृदय में क्षमा देने की, माफ करने की भावना नेचुरली उत्पन्न। हम ऐसे भी कहते हैं मांगने से कोई चीज मिलती नहीं है, और मांगने से तो मरना भला भी कहते हैं, ये भी कहावत है। हमारा अप्रोच, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि नेचुरली उसको माफ करने की इच्छा हो जाए, ये करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
बहुत यहाँ पर जो आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं, तो बहुतों को ऐसा लगता है कि ये जीवन बहुत उपयोगी जीवन है और मुझे इसी शिक्षा के आधार पर मेरा जीवन आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन परिवार का एक सदस्य, यानी पति पत्नी की अगर हम बात करें, तो एक सदस्य जो है इसको बहुत तन्मयता के साथ, लगन के साथ फॉलो करता है और दूसरा नहीं करता है, तब वहां संबंधों में जो थोड़ा बहुत टकराव शुरू होता है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए?
ऐसे भी देखे पति और पत्नी हैं, लेकिन विचारधाराएं तो अलग अलग होती है ना, नेचर अलग अलग होता है या नहीं, संस्कार भी अलग अलग होते हैं और इंटरेस्ट भी दोनों का अलग अलग होता है। कई बार मैंने देखा है परिवार में वो पत्नी कहती है मेरे को तो समोसा पकौड़ा अच्छा लगता है, और वो भाई कहता है मेरे को मिठाई अच्छी लगती है। तो डिफरेंस तो है ही है, पहनने में, खाने में, विचार में, निर्णय लेने में, बहुत सारी बातों में डिफरेंस होता है, हर एक की रुचि इंटरेस्ट अपना अपना होता है। लेकिन हमें ये समझ करके चलना है, जीवन में साथी हैं, साथ लेके चलने की बात है, और इसीलिए थोड़ा ओपन माइंड भी होना चाहिए। आज मैंने ऐसे भी देखे हैं कि पत्नी है वो लक्ष्मी की पूजक है, चाहक है, और जो भाई हैं वो शिव का पूजक है, कोई हनुमान का है, तो कोई गणेश को, तो वो हनुमान की भक्ति करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? गलत ना करें। और आपको हनुमान का अच्छा लगता है पूजा पाठ मंत्र या जो भी, तो आप वो करें, गलत कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी दोनों की रुचि अपनी अपनी होंगी तो उसमें डिस्टर्ब करने से तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक अच्छा चेंज आ रहा हो, हमने कईयों को देखा है कि यहाँ आते हैं, पहले एक व्यक्ति आता है, उनकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आता है, तो फैमिली में भी एक अच्छा एटमोस्फियर। लेकिन कई बार कई भाई या बहन कहती हैं कि बहन मेरा अच्छा परिवर्तन भी इनको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करूं? नहीं, जिस समझो पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, बहुत बोलते थे, अभी मैं शांत रहता हूं, आवश्यकता के अनुसार बोलता हूं, तो ये तो अच्छी बात है ना, गुस्सा नहीं करता, और ज्यादा जो बोल बोल करते थे उससे अभी कम बोलते, तो अच्छी बात है। पहले तो आप बहुत बोलते थे, अभी वहां जाते हो ना, ये क्या है, चुप क्यों हो गए हो? तो ये तो कोई बात नहीं बनी। तो ये अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट को समझ के आपस में चले तो प्रॉब्लम कोई भी हो परिवार के अंदर, उसका सहज सॉल्यूशन आ सकता है। ओम शांति।
मेरा अगला प्रश्न राज बहन जी से है। आप लगभग 5 दशकों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं, और आपके पास आने वाले जो विद्यार्थी हैं या जिज्ञासु हैं, उनके घर में जो अशांति होती है, संबंधों में टकराव के कारण दरार पैदा हो जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी समस्या तक उत्पन्न होने लगती है, और उन्हें ऐसा लगता है ये आजीवन चलने ही वाली समस्या है, तो ऐसी परिस्थिति वालों को भी कैसे आध्यात्मिकता से जीवन में परिवर्तन अनुभव किया जा सकता है, या उनके घर में भी सुख शांति आ सकती है, वो आप अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे।
ओम शांति। ये ईश्वरीय ज्ञान असंभव को संभव करने वाला है, और ये परिवर्तन हमारा यहाँ पर मानसिक होता है, और मन का जो परिवर्तन है, मन की जो शुद्धता है, सात्विकता है, उसकी तरंगे दूर दूर तक फैलती हैं। ये तो अपना एक परिवार है, यहाँ तो हमें परमात्मा कहते हैं कि आप अपने मन के विचारों से पूरे विश्व को बदल सकते हो, और विश्व तो बहुत बड़ी है, और हमारा घर और हमारा परिवार तो बहुत छोटा है, तो जब विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं तो परिवार को भी कर सकते हैं। उसके लिए ये भी हमें समझना है कि इस सृष्टि रंगमंच पर हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है, और हर एक आत्मा अपने रोल को अदा करती है, और हर एक आत्मा अपने अपने संस्कार और स्वभाव के वश में भी है, और इसलिए परवश आत्मा को हमें सहयोग भी देना है कि वो उन संस्कारों से मुक्त हो, और वो हम शांति से ही दे सकते हैं। हम ऐसा ही समझें कि इस घर के अंदर हम इस तरह से हैं जैसे सूरज एक है, परंतु सबको प्रकाश देता है, सबको शक्ति देता है, ऐसे ही मुझे भी सारे परिवार को, अपने पूरे घर को अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, और शांति के ही प्रकंपन अपने घर में फैलाने हैं, सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है। तो अनुभव कहता है कि उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, और साथ साथ न सिर्फ ये आत्मशक्ति काम करती है, इस ज्ञान मार्ग में ईश्वर भी हमारा साथ देता है। जब शुभ भावना शुभ कामना रहती है तो परमात्मा का भी हमें सहयोग मिलता है, और उसमें सफलता जरूर मिलती है। हम ये करके देखें तो इसका रिजल्ट हम खुद ही अनुभव करेंगे कि कैसे घर का वातावरण परिवर्तन हो रहा है।
धन्यवाद। गिरीश भाई, आप पूरे इंडिया में ट्रैवल करते रहते हैं, और आजकल गजट से भी लोग हो गए हैं, तो मोबाइल जो है सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन उसका मिसयूज भी हो रहा है, यहां तक कि बच्चों का भी मोबाइल पर समय इतना ज्यादा देना, अपनी पढ़ाई छोड़ करके भी दूसरी चीजों को देखते हुए उसका मिसयूज करते हैं। या ये कहिए कि जैसे कोई बड़ी गैदरिंग में हम जाते हैं तब भी लोग अपना मोबाइल साइलेंट मोड में नहीं करते हैं, तो बाकी सबको उनकी फोन की घंटी सुननी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हम बिल्कुल शांत मन से बैठे हैं और बहुत तन्मयता से किसी को सुन रहे हैं और बार 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 घंटी बजती, कभी इसकी कभी उसकी कभी उसकी। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं और इसमें परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है?
मजाक में कह रहा हूं, उनकी मोबाइल की घंटी बज रही है और मेरी यहां की घंटी बज रही है। वो मोबाइल को साइलेंट नहीं कर पा रहे, हम यहां साइलेंट नहीं कर पा रहे। सो मोबाइल टेक्नोलॉजी तो बहुत इंप्रूव हो गया है, उसमें कितने सारे मोड हैं, साइलेंट मोड है, वाइब्रेटरी मोड है, फ्लाइट मोड है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। हमारे यहां पे भी बहुत सारा मोड है, गुस्सा मोड, टेंशन मोड, इरिटेशन मोड, फ्रस्ट्रेशन मोड। अब इसको ठीक करने का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वो मेडिटेशन से आता है। और वैसे भी अगर ऐसी सभा में किसी का मोबाइल बज रहा हो तो सोचने वाली बात है, उन्होंने उस रिंगटोन को डाउनलोड करने में कितना मेहनत किया हो, तो एक दो दो घंटे लगा देते, ये ठीक नहीं लग रहा। किसी का हनुमान चालीसा, किसी का भक्ति संगीत, किसी का पॉप, किसी का इंस्ट्रूमेंटल। बट द क्वेश्चन इज व्हाई एम आई गेटिंग डिस्टर्ब्ड। आई अंडरस्टैंड ऐसे परिस्थिति में नहीं बजना चाहिए, एक डेकोरम को, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए। अगर गलती से भी बज जाए किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन तो मुझे देखना है। वैसे कहावत बहुत सिंपल है और ये जीवन का सिद्धांत है, नोबडी कैन टेक अवे माई पीस, नोबडी कैन टेक अवे माई पीस, आई गिव माई पीस टू देम। वाई? बिकॉज आई कैन नॉट कंट्रोल वॉट दे डू टू मी। मैं नियंत्रण नहीं कर सकता हूं कि आप मेरे साथ क्या करें। आई कैन ओनली कंट्रोल हाउ आम आई रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो उस पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। सो मेडिटेशन या फिर आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी ही ये है कि मैं कौन हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। बाहर की कोई भी परिस्थिति, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे रिंगटोन हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई साहब, या फिर बोल सकते हैं अनाउंस करिए मोबाइल को साइलेंट करने का। अब मान लीजिए मोबाइल तो वो साइलेंट कर दें, कोई व्यक्ति हो जीवन में वो साइलेंट ही नहीं हो रहा है आपके प्रति, वो आपको दुख पे दुख दे रहा है, तो यू कैन नॉट कंट्रोल द अदर पर्सन। अब वही दीदियां भी कह रहे थे राज्यों का आधार ही ये है। तो मुझे स्वयं को शांत रखना बहुत जरूरी है हर परिस्थिति में। किसी का मोबाइल बजे भी, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मान लीजिए आपके घर में टीवी चल रहा है और आप किसी से बात कर रहे हैं फोन पर और आप कंप्लीटली एकाग्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, तो आप में से काफी लोगों ने अनुभव किया होगा कि आपकी एकाग्रता बात पर होती है, टीवी की आवाज पर नहीं होती। हो सकता है डिस्टर्बेंस हो रहा हो बट आप इतने उसमें इन्वॉल्व हो चुके हो, जिसको हम द स्टेट ऑफ फ्लो कहते हैं, आप इतने उसमें एकाग्र हो चुके हैं कि बाहर का डिस्टर्बेंस आपको सुनाई भी नहीं देता है। सो वो थोड़ा प्रैक्टिस से, और ये सिद्धांत को हमको बहुत अच्छी तरह धारण करना पड़ेगा कि मैं स्वयं के रिस्पॉन्स को ही नियंत्रित कर सकता हूं, दूसरों को नहीं कर सकता हूं। दूसरा सवाल जो भाई साहब ने पूछा कि आज मोबाइल को लेकर के हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, और अगर मैं आपको बताऊं रोड एक्सीडेंट्स में ये मोबाइल का यूसेज जो है, टेक्स्ट और हम ड्राइव करते हैं, बहुत मेजर एक कॉज ऑफ डेथ एंड इंजरी का ये होता है, जिसको हम डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग कहते हैं। क्योंकि हम गाड़ी चला रहे हैं, हम उस पर मोबाइल में कोई मैसेज आया, हम फोन पे बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में खराब नहीं है, मनुष्य उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है उस पर निर्भर करता है कि हम ठीक हैं या नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप और हम जब मोबाइल यूज करते हैं और जनरली ऐसा देखा गया है कि हम रात को सोने के पहले थोड़ा मोबाइल देखते हैं, वो टाइम हमारे पास थोड़ा फ्री रहता है और हमको लगता है दिस इज मी टाइम और मैं थोड़ा सा मोबाइल देख लूं। थोड़ा सा ही देखूंगा, ज्यादा नहीं, लेकिन वो थोड़ा 2-3 घंटे कब हो जाता है वो पता नहीं चलता है। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आप थोड़ा मतलब थोड़ा ही देखते हैं, मैं तो दूसरे लोगों के बारे में बता रहा हूं। अब वो थोड़ा जो 2-3 घंटे हो जाता है उसका एक आपको इफेक्ट हम बताते हैं। उसका जो ब्लू स्क्रीन होता है, जो ब्लू रेज होता है, वो आंखों पर पड़ने से हमारा जो ब्रेन है वो उसको बेवकूफ बना देता है। द ब्रेन इज ट्रिक्ड। और ब्रेन में शाम को 7 बजे 7:30 बजे से मेलाटोनिन करके एक हार्मोन होता है जो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, जो हमको नींद को लाने में सहायक होता है। और ये हर व्यक्ति को शाम के समय से ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू कर देता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बॉडी, इतना इंटेलिजेंट ये बॉडी है। लेकिन जहां मैंने वो मोबाइल का जो ब्राइट लाइट है वो मैं आंखों में पड़ता है तो वो ब्रेन को बेवकूफ बनाता है और ये ब्रेन को पता चलता है कि भाई अभी रात हुई नहीं है, इतना प्रकाश है, ये सोने का टाइम ही नहीं है। और ब्रेन मेलाटोनिन सीक्रेशन बंद कर देता है और फिर मुझे रात को नींद आने में बहुत तकलीफ होती है। और नींद का, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब कह रहे गोली खानी पड़ेगी, आप देख लो कौन सी गोली खानी है। 2 प्रकार की गोली होती है, एक रात को खाकर नींद वाली, दूसरा दिन या फिर रात भर ना सोकर सुबह उठकर कार्य व्यवहार में गलती करने पर भी गोली मिलती है, ठीक है ना, डांट मिलेगा कि आप अटेंटिव नहीं हो, आपको नींद आ रहा है, तो वॉट एवर गोली आप देख लीजिए। सो कहने, आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कुछ लोग दोनों अनुभवी लग रहे हैं, ठीक है ना। सो अब देखिए वो डिवाइस है वो हमारे मदद के लिए मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य ने मोबाइल को बनाया और मोबाइल का आवाज अब मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। द क्रिएटर इज गेटिंग डिस्टर्ब बाय द क्रिएशन। तो ये सही तरीका नहीं है जहां हमारी दुनिया जा रही है। सो नंबर वन। नंबर टू, ऐसा भी देखा गया है कि इसका एक जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट करता है वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर में। और इसका जो एक सिंपल तरीका ये हो सकता है जो हमको यहां राजयोग में सिखाया जाता है कि बड़ों को एग्जाम्पल और सैंपल बनना पड़ेगा। घर में बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ आप बहुत डेमोक्रेटिकली डिस्कस करें कि कौन कितना समय मोबाइल यूज करेगा। वो बड़ों को पहले शुरू करना है। एटलीस्ट खाने के टाइम पर हम मोबाइल यूज ना करें, सोने के 1 घंटे पहले तक ना करें, सुबह उठने के 1-2 घंटे तक ना करें, बहुत जरूरी है तो ही हम उसको यूज करें। मोबाइल को वो जो नोटिफिकेशन होता है ना, बुरा मत मानिएगा, मान लीजिए हम किसी कार्य में बिजी हैं और हमारा नोटिफिकेशन टिंग करके बजता है, तो जब वो टिंग करके बजता है तो हम फिर ढूंढने लग जाते हैं मोबाइल कहां पर है। माताओं के तो क्या कहने, वो पर्स ही खोलती रहती हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता चलता कौन से खाने में मोबाइल है, ठीक है ना। इतने सारे तो जिप होते हैं माताओं के बैग में। अब वो टिंग करके हम मोबाइल को ऐसे देखते हैं जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य सलाहकार मैं ही हूं और प्रधानमंत्री जी मुझसे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि भारत और चीन का क्या करूं, और अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो युद्ध छिड़ जाएगा। और हम मोबाइल फोन निकाल के देखते हैं तो पता चलता है उसमें मैसेज आता है वोडाफोन अलर्ट, डेटा पैक खत्म हो रहा है, रिचार्ज कर। आप लोग अभी भी सुधरे नहीं हो, गलत बात पे ताली बजाते हो, पहले दिन भी आपने गलत बात ये जो हम कमिट कर रहे हैं ना वो एक बार नहीं करते, वो बार 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 करने से वो मेरी आदत बन जाती है। हर चीज में हम डिस्ट्रैक्टेड ही हैं, हमारे पास वो पेशेंस ही नहीं है कि बज रहा है ना ठीक है, नॉट नाउ, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्टिविटी, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक छोटे से ये मोबाइल से हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन आप भी करें और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनको ये मैसेज देना, या आपके क्या कहते जीवन शैली से वो भी आपसे इंस्पायर हो कि मुझे मोबाइल फोन को इतना समय ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना। ये एक सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन की बात है जो राजयोग मेडिटेशन से आ जाता है। हाँ, कोई परीक्षा भी ले रहा है, ठीक है ना, किसी का भी नोटिफिकेशन बना, उनका नोटिफिकेशन टिंग बजे, आपका भी बजना चाहिए, वाह क्या रिंगटोन है, ओहो हो, कुछ कर नहीं सकते, मैं सिर्फ अपनी खुशी अपनी शांति का ही मालिक हूं। दूसरों को हम बता सकते हैं लेकिन नहीं सुन रहे हैं तो भी आई एम द व्हाट यू कैन आई कैन ओनली कंट्रोल माय इमोशंस। थैंक यू। ओम शांति।
आप कमल भाई को मेडिटेशन कमेंट्री सुनते हुए बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे ना, है ना? हाँ या ना? तो अभी एक प्रश्न यही है कि परमात्मा को एक प्रकाश स्वरूप में हमको सिखाया गया है कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो परमात्मा को याद करने के समय फाउंडर फादर ब्रह्मा बाबा का चित्र लगाना जरूरी है क्या? जैसे अब यहां पर भी देखो स्टेज के पीछे मेन पिक्चर जो है वो ब्रह्मा बाबा का फोटो है, उसके ऊपर शिव बाबा का भी फोटो है, तो मेडिटेशन में उसका कोई लाभ मिलता है क्या या इसकी आवश्यकता है या नहीं? प्लीज।
ये जो प्रश्न है, जब मैंने पहली बार एंटर किया और क्योंकि परमात्मा का परिचय जो आप सबने सुना होगा है ना, परमात्मा निराकार है, आज आपका प्रश्न भी था ये, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, तो मेरे मन भी यही प्रश्न आया कि जैसे ही कोर्स पूरा हुआ और बाबा रूम में गए हम, तो वहां पर ब्रह्मा बाबा की फोटो थी, तो मैंने पूछा तो नहीं लेकिन मेरे मन में उस समय जरूर ये प्रश्न आया कि निराकार परमात्मा है तो फिर ये किनकी फोटो है ना, ये क्यों है, इनको क्यों याद करें हम? देखिए, चित्र का एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है, एक्चुअल में किसी भी चित्र की जरूरत नहीं है मेडिटेशन के लिए, किसी भी चित्र की। या जैसे आप देखते होंगे यहां पर भी रेड लाइट करते हैं, है ना, मेडिटेशन के समय, तो एक्चुअल में रेड लाइट की भी जरूरत नहीं है, चित्र की भी जरूरत नहीं है, यहां तक कि म्यूजिक की भी जरूरत नहीं, नीड नहीं है वो। लेकिन फिर क्यों चित्र हर सेंटर पे आप जाएंगे वहां पर होता है, प्लस जो आप क्लासेस सुनते होंगे तो उसमें ये कहा जाता है कि आप चित्र रखिए, है ना, वो अच्छा है, क्योंकि जब हम किसी चित्र को सामने रखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो चित्र परमात्मा है। जैसे भक्ति में हुआ ना कि हमने शिवलिंग रखा और पूजा करने लगे, बट शिवलिंग भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक है ताकि हमें वो स्मृति आए। तो जो हम चित्र रखते हैं, चाहे वो निराकार परमात्मा का, चाहे ब्रह्मा बाबा का या फिर लक्ष्मी नारायण का भी, तो वो चित्र सिर्फ एक स्मृति दिलाने के लिए है कि पूरा दिन हम इधर उधर व्यस्त रहते हैं, घर पे आए तो हमने चित्र देखा तो हमें याद आया कि मुझे परमात्मा को याद करना है। और ब्रह्मा बाबा को जो हम रखते हैं, आपने अभी आई थिंक ये सेशन यहां पे अभी नहीं हुआ होगा, बट जाकर आप जब 7 डेज कोर्स करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आएगा कि कैसे परमात्मा कलयुग के अंत में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ये सारा ज्ञान, ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, जो यहां रोज स्पिरिचुअल स्टडी होती है, किसी इंसान की नहीं है, है ना, आप सब देखते भी होंगे कि कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे चल रहा है सब कुछ शांतिवन में, यहां पर आप देखें कैसे मैनेजमेंट हो रही है, पता नहीं कौन कर रहा है कैसे कर रहा है, किसी के घर में अगर 100 लोगों का प्रोग्राम हो कितना मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना। तो ये परमात्मा की शक्ति द्वारा, जो हम मेडिटेशन में शक्ति लेते हैं उसके द्वारा ये चल रहा है। तो चित्र एज सच, कोई भी चित्र की जरूरत नहीं है, बिना चित्र के भी आप कर सकते हैं, परंतु शुरू शुरू में खासकर इसको प्रैक्टिस करने के लिए अगर चित्र सामने होगा, इट विल बी वेरी इजी टू विजुअलाइज, उसको विजुअलाइज करना इजी होगा। कई बार ये आता है कि निराकार को कैसे हम विजुअलाइज करें, लेकिन अगर कहा जाए कि ब्रह्मा बाबा को आप विजुअलाइज करिए, इजी होगा वो विजुअलाइज करना और ये फील करना कि परमात्मा से मुझमें वो किरणें आ रही है ना। तो इसलिए चित्र और लाइट भी ये सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए है कि हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है।
थैंक यू। दिव्या बेन जी, आप बहुत सारे सेवा केंद्रों का संचालन करते हैं और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्वव्यापी संस्था है, इतने सारे कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है, साल भर आपकी एक्टिविटीज चलती ही रहती हैं, तो आप ये धन कहाँ से व्यवस्था करते हैं? इसका धन का जो उपार्जन कहाँ से होता है, सोर्स क्या है आपका, किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं?
ये कॉमन प्रश्न है और स्वाभाविक भी है, प्रश्न आया है इसका। और बहुत बारी बहुत लोग मिलते हैं तभी उनके मन में प्रश्न उठता है, हम हो तो हमारे मन में भी उठे, नेचुरली है, क्योंकि इतना सारा विशाल रूप में कार्य चलता है और हम सब जानते हैं कि बिना धन के तो कुछ होता नहीं है, पैसों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। लेकिन इस विद्यालय की ये विशेषता है कि जो इस संस्था से जुड़े हुए भाई बहने हैं वो अपने तन मन और धन से यथाशक्ति, इसमें किसी को कोई फोर्स और इतना ही और कोई मेंबर बनना है ऐसी कोई बात नहीं होती है, एक बॉक्स होता है कि जिसमें जो स्वयं की इच्छा और भावना हो उस हिसाब से आने वाले वहां वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और कार्य होता है। लेकिन मेरे इतने वर्षों के अनुभव में मुझे ये लगता है कि जो परिवार में आप एक कोई कार्य करो तो उसमें जितना धन खर्च होता है उतना हमें नहीं होता, और उसका कारण है क्योंकि हर एक व्यक्ति या परिवार का सदस्य समझता है। जैसे आपके परिवार में कोई धन कमाता है तो दूसरा घर का कार्य करता है, तीसरा कुछ और कार्य करता है, सबके सहयोग से आपका परिवार भी चलता है। ऐसे यहाँ आने वाले हमारे पास वैरायटी भाई बहने हैं, कोई कारपेंटरी का, कोई सिलाई का काम जानते हैं, कहीं अपनी तन से सेवाएं वहाँ कहेंगे कि मंदिर में जैसे होता है भाई सफाई, मैं धन नहीं ना ये कर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ सफाई कर सकता हूँ, बहुत सारी सेवाएं हैं। तो इस प्रकार से वैरायटी आने वाले भाई बहने हैं, जो सिलाई काम करता है हमें पर्दे सिलाई करने का खर्च नहीं होता क्योंकि वो अपनी सेवा देता है, कारपेंटर होता है अपनी सेवा देता है, और व्यापारी वर्ग भी है जो उनका बिजनेस हो तो वो चीज उस सेवा में लगाता है। तो इस तरह से ये कार्य है वो चलता है, लेकिन बिना धन के तो कुछ नहीं चलता, सब मिल करके आपस में ये अपने परिवार को चलाते हैं, ऐसे इस संस्था के कार्य को भी करते हैं और समझते हैं कि हम सेवा देंगे। आज यहाँ आने वाले भाई बहनों ने सेवा दी है, ये बनाया है तो आप सभी यहाँ बैठे हो, नहीं तो यहाँ बैठे हुए होते ये व्यवस्था होती? उन्होंने अपना योगदान दिया है और यहाँ जो प्रोग्राम के लिए आते हैं उन्हों के मन में भी वो भावना जागती है कि हम इतना दिन यहाँ पर रहे, खाया पिया, इतनी सुविधा हमें मिली, इतना ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान मिला। तो स्वयं आज टूर में जाते हैं तो सोचते हैं कि एक दिन होटल का खर्च कितना होता है, आप दिन भी कहीं बाहर जाओ तो कितना खर्च होता है, वो खुद भी सोचते हैं। तो हम यहाँ ये रह रहे हैं, यहाँ भी कुछ खर्च होता होगा तो सामने से आके ऑफर करते हैं कि बहन हम इस विद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से परिवार समझ के सब मिल करके सब अपना योगदान अपनी कलाओं को इसमें यूज करके अपनी सेवाएं देते हैं, इस प्रकार से ये परिवार का खर्च है वो चलता है। ओम शांति।
बिंदुबेन, आप भारत की आर्थिक राजधानी में रहते हैं और भागदौड़ भरी जिंदगी में ये आध्यात्मिकता, वर्क लाइफ बैलेंस हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मैं अगर आध्यात्मिक शक्ति को धारण करना चाहूं तो मुझे समय तो देना पड़ेगा। अब समय के लिए तो कहा था टाइम इज मनी, मुझे परिवार के लिए सारे धन की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए तो भाग भाग लगा ही रहता है, लेकिन उसके बीच में भी क्या ये आध्यात्मिकता जरूरी है? और अगर आध्यात्मिकता को अपनाऊं तो मेरा धन का जो कमी होगी उसका क्या करूंगा मैं?
जरूर बॉम्बे बिजी लाइफ है वहां पे और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और टाइम नहीं मिलता है कि हम आध्यात्मिकता के लिए समय निकालें, और इसीलिए परमात्मा ने सुबह का समय निश्चित किया है। सुबह तो हमारी है ना, और कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जरूर अगर हम समझते हैं कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस है तो जरूर अपनी इनर पावर्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि बाहर तो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और उनको उनके प्रति तो कुछ किया नहीं जा सकता है। जो हम कर सकते हैं वो अपनी इनर पावर को, कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाएं ताकि हम उस बदलते परिवेश में स्टेबल रह सकें। और ऐसे में जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं, यहाँ पर आप खुद भी महसूस कर रहे हैं, जब दिन की शुरुआत शक्तिशाली परमात्मा की याद से होती है, उसके ज्ञान के श्रवण से होती है, तो दिन भर के चैलेंजेस को फेस करने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। ये ऐसा है कि जैसे बाहर बारिश हो रही है, बारिश के निमित्त हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम रेनकोट पहन सकते हैं। हमको पता है कि जब मैंने रेनकोट पहना हुआ है आई एम सेफ इनसाइड, आई कैन डू नथिंग अबाउट द रेन, बट यस वंस आई पुट ऑन माई रेनकोट मुझे पता है मैं अंदर सेफ हूँ। बिल्कुल इसी तरह से बाहर बिजी लाइफ में बहुत स्ट्रेसेस हैं, दिन भर में अगर समय नहीं भी मिलता है तो सुबह के समय को अगर हम शक्तिशाली बिताना सीख जाएं, उसको एक लाइफस्टाइल बना लें, उसको अगर हम एक आदत बना दें तो बिजी लाइफ में भी इजी रहना पॉसिबल हो सकेगा।
थैंक यू। हमारे इस आयोजन के पीछे बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज डेवलप किए गए हैं, और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। कविता बहन हमारे बीच बैठी हैं, आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके सेवाओं को विस्तार देने का करते हैं, तो प्रश्न ऑडियंस का ये है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या हमारा भी कोई रोल हो सकता है इस सेवा में या इस तरह की एक्टिविटी में? हम किस तरह से, किस रूप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं?
जिस सेवा को, सेवा से आप बेनिफिट ले रहे हैं, जब मन में ये भावना आती कि जो फायदा हमें मिला ये फायदा हम औरों तक पहुंचाएं, सबसे पहले तो ये बीज, ये संकल्प, ये भावना बहुत जरूरी है कि वी हैव बेनिफिटेड, वी वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस बेनिफिट टू अदर्स। उसके बाद आप जानते हैं आपके स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र में आउटरीच के लिए, औरों तक पहुंचने के लिए क्या क्या विधियां हो सकती है। जब वो संकल्प रूपी बीज होगा तो आपको ख्याल चलेगा कि अब हम इसको कैसे औरों तक पहुंचा सके। तो कहीं इसमें फिर हमारे पास जो प्रीवियसली आए हैं, तो कईयों ने कहा कि भाई आप हमारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कराइए, आप हमारी ऑफिस में ये कराइए। आप इस प्रकार से हमारे पास सामने से ही ऑफर आई थी कि भाई यहाँ यहाँ मीडिया में पॉसिबल है तो यहाँ पर आप डिस्प्लेज लगा सकते हैं। तो संकल्प रूपी बीज कहो या दिल में भावना होना बहुत जरूरी है। तो फिर उसके बाद आप स्वयं ऑफर करेंगे कि भाई हमारे द्वारा क्या सेवा हो सकती है, तो फिर आपका संकल्प और विद्यालय की मदद दोनों मिलकर के सेवा के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी स्वयं की कोई ऐसी विशेषता है, जैसे कोई बहुत अच्छे राइटर हैं, कोई बहुत अच्छे एडिटर हैं, कोई बहुत अच्छे अपनी विशेषता में आगे हैं, तो वो भी आप फिर अपने संबंधित सेवा केंद्र से भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ है एक बार यहाँ बात करें तो हम कोरिलेट करा सकते हैं। तो अपना समय या अपनी विशेषता ईश्वरीय कार्य में लगे, ये भी आप ऑफर कर सकते हैं कि हम कैसे ईश्वरीय कार्य में अपनी विशेषता से सहयोगी बन सकते हैं। तो दोनों प्रकार से भावना को हम साकार रूप दे सकते हैं। ओम शांति।
मुझे लगता है कि हम इस पैनल से वो कुछ सब कुछ सुन चुके हैं जो अब हम अपने जीवन में इस खुशहाल जीवन की यात्रा पे तेज गति से आगे बढ़ सकेंगे। उस परमात्मा को हम दो मिनट के लिए याद करेंगे सत्र को समाप्त करने से पहले, ताकि ये जीवन यात्रा सदा खुशहाल जीवन यात्रा बनी रहे। ओम शांति।